विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीरिया के पूर्वी गोता इलाके में जारी घटनाक्रम की। पूर्वी गोता सीरिया की राजधानी दमिश्क का पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र है। ये बहुत हरा भरा इलाका है जहां बड़े बड़े बाग और सुंदर हरे भरे खेत हैं। लेकिन इन दिनों विश्व मीडिया में ये इलाका अपनी सुंदरता की वजह से चर्चा का मुद्दा नहीं बना है, बल्कि वहाँ पर जारी लड़ाई के कारण इस पर मीडिया ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी बहस हो रही है। सीरिया के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत स्टीफन डी मिस्तूरा ने कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में संघर्ष विराम लागू हो जाए।
We will have to push for it to take place as soon as possible because there is no alternative but a ceasefire and humanitarian act.
डी मिस्तूरा इससे पहले ये चेतावनी दे चुके हैं कि पूर्वी गोता का इलाका दूसरा एलेप्पो बनने जा रहा है। डी मिस्तूरा ने वर्ष 2016 में एलेप्पो में होने वाली लड़ाई से पहले भी चरमपंथी संगठनों से कहा था कि वो एलेप्पो से बाहर निकल जाएं ताकि इलाके को लड़ाई के विध्वंस से बचाया जा सके। डी मिस्तूरा के इस बयान पर चरमपंथी संगठन और उनके समर्थन करने वाले देश सऊदी अरब, कतर और इमारात बहुत नाराज हो गए थे और उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाए गए थे। बाद में लड़ाई हुई और चरमपंथी संगठनों को एलेप्पो से बाहर खदेड़ दिया गया, लेकिन इस लड़ाई से क्षेत्र को नुकसान पहुंचा जहां इस समय पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। डी मिस्तूरा ने अब यही चेतावनी दी है पूर्वी गोता इलाके के बारे में। पूर्वी गोता का इलाका जो राजधानी दमिश्क के निकट स्थित है उन चार क्षेत्रों में था जिन्हें कम तनाव वाले इलाकों में शामिल होना था, लेकिन इस क्षेत्र में संघर्ष विराम का जो समझौता लागू हुआ उसे चरमपंथियों ने बार बार तोड़ा। यही वजह थी कि सीरियाई सेना ने रूस की मदद से इस इलाके पर तेज हमला शुरू किया है, क्योंकि इस इलाके से राजधानी दमिश्क के मोहल्लों पर मोर्टर गोले फायर किए जा रहे थे। इन हमलों में अनेक आम नागरिक निशाना बने। सीरियाई सरकार राजधानी दमिश्क पर हमले को रेड लाइन समझती है, क्योंकि इससे ये संदेश जाता है कि युद्ध देश की मूल संस्थाओं के करीब पहुंच गया है। यही कारण था कि सीरियाई सरकार ने इस पर कड़ी कार्यवाही की। इससे पता चलता है कि सीरियाई सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर देने का फैसला कर लिया है। सीरियाई सरकार ने कम तनाव वाले क्षेत्रों में संघर्ष विराम का पूरी तरह पालन किया, लेकिन चरमपंथी संगठनों ने सरकार की इस नीति और इस प्रतिबद्धता का गलत फायदा उठाया और आम नागरिकों को निशाना बनाया। पूर्वी गोता क्षेत्र में जारी लड़ाई से जो नुकसान हुआ है उसे देखते हुए विश्व स्तर पर इस समस्या पर चर्चा होने लगी है। कुछ रिपोर्टों में 300 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मांग की है कि लड़ाई रोक दी जानी चाहिए। रूस ने मांग की है कि संकटमय स्थिति की समीक्षा के लिए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक होनी चाहिए। ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में अमरीका और उनके सहयोगियों ने ईरान पर आरोप लगाया और सीरियाई सरकार को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की। अमरीकी सरकार की महिला प्रतिनिधि ने सीरियाई सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए जिनका जमीनी तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है।
The regime wants to keep bombing and gassing these 400,000 people and the Assad regime is counting on Russia to make sure this Security Council is unable to stop their suffering.
गोता के इलाके में कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं जिन्हें अलग अलग देशों की ओर से मदद मिल रही है। इन संगठनों में एक अनुसरा फ्रंट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन माना जाता है। इस आतंकी संगठन से तुर्की की सरकार के करीबी संबंध हैं। गोता में एक और बड़ा चरमपंथी संगठन है फैलकुर रहमान। इस संगठन को कतर का समर्थन प्राप्त है और कतर से उसे आर्थिक और सामरिक सहायता मिलती है। इस इलाके में सबसे बड़ा चरमपंथी संगठन जैशुल इस्लाम है जो सऊदी अरब के इशारे पर काम करता है। इस आतंकी संगठन के सरगना का नाम मोहम्मद अल्लूश है। कुछ संगठनों को अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी मदद मिलती है। अरब जगत के वरिष्ठ टीकाकार अब्दुल बारी अतवान इस बात पर क्षेत्रीय और पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना करते हैं कि उन्होंने सीरिया के भीतर संगठनों को हथियार और पैसा देकर सीरिया में गृह युद्ध की आग भड़का दी, ये संगठन अपने देश और अपने ही देशवासियों पर हमले कर रहे हैं, और अब जब सरकार ने इन चरमपंथी संगठनों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं तो ये सारे देश दूर से बस अपने टीवी चैनलों पर शोर मचा रहे हैं।
يا اخي والله العرب تخلوا عنهم السوريين والله هم الذين زرعوا بذور الفتنه وذهبوا لماذا لا تفعل دول الخليج اي شيء للسوريين الذين يقصفوا
सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद को भी ये शिकायत है कि यूरोपीय संघ के देशों ने भी सीरिया में लड़ने वाले आतंकी संगठनों से संबंध रखे और वो आतंकियों की मदद कर रहे हैं।
The EU is supporting the terrorists in Syria from the very beginning under different titles, humanitarians, moderate and so on. Actually, they were supporting al-Nusra and ISIS from the very beginning. They were extremists from the very beginning. So they cannot destroy and build at the same time.
ये बात सोचने वाली है कि दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की स्थिति है जहां बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। सामने ही यमन की मिसाल है जहां मानव त्रासदी घट रही है और इसमें अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। यमन में बच्चों और बेगुनाहों की मौत और उनके नरसंहार पर पश्चिमी देश और इलाके के देश विरोध में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? सच्चाई ये है कि इन देशों को न तो सीरिया से कोई रुचि है और न सीरिया के आम नागरिकों से उन्हें कोई लगाव है। सच्चाई यह है कि सीरिया में आम नागरिकों की बात करके जो इतना शोर शराबा मचाया जा रहा है वो उन आतंकी संगठनों को बचाने की कोशिश है जिन्हें क्षेत्रीय और पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है और जो गोता के इलाके में सीरियाई सेना के घेरे में आ चुके हैं। गोता का इलाका चूंकि राजधानी दमिश्क के करीब है, अतः इन देशों की कोशिश है कि ये आतंकी संगठन यहाँ मौजूद रहें और इसके लिए आम नागरिकों को ढाल के रूप में प्रयोग किया जाए ताकि इस इलाके से दमिश्क पर हमले होते रहें और सीरिया संकट समाप्त ना हो। लेकिन ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि सीरियाई सेना अपनी जनता की मदद से अपने अधिकतर इलाकों को आतंकियों के नियंत्रण से आज़ाद करवा चुकी है और शेष इलाकों को भी ज़रूर आज़ाद करवा लेगी तथा अमेरिका और इसराइल और क्षेत्रीय देशों की साजिशों को पूरी तरह विफल बनाएगी। क्षेत्र की जनता को अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करे और साजिशों को नाकाम बनाए। पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार अजहर आबिदी।
अमेरिका का क्या काम है कि 10,000 मील दूर से वो आए और आके यहाँ पर मुदाखलत करे और अरबों के दरमियान फसाद भी करवाए और फिर अरबों और मुसलमानों के दरमियान उनकी पीठ में खंजर घोंपे और इसराइल को यहाँ तहफ़ दे? कोई उसका काम नहीं है। जबकि ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, ईरान तो वहाँ खुद नहीं लड़ रहा है, तो हिजबुल्ला के मुजाहिद अरब मुजाहिद वहाँ पर लड़ रहे हैं, शाम की फौजें वहाँ पर लड़ रही हैं। शाम के इलाके पर इसराइल ने कब्जा किया है, लबनान के इलाकों पर इसराइल ने जो है वो कब्जा किया हुआ है, फिर फलस्तीन पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। तो क्या फलस्तीनी मजलूम जो हैं वो अपनी जद्दोजहद अपनी आज़ादी की जद्दोजहद ना करें? क्या शाम के जो मुमलिकत है और शाम के अवाम अपने इलाके वापस ना लें? क्या गासिब इसराइल से जो एक जुल्म के शिकंजे के तहत वहाँ पर अरबों पर हुकूमत कर रहा है और दुनिया भर के यहूदी वहाँ पर लापसाए हैं, क्या उनके खिलाफ जद्दोजहद ना हो? शाम हो, हिजबुल्ला हो, लबनान हो, अरब हो, उनका हक बनता है अपनी ज़मीनों को और अपने इलाकों को वापस लेने का और अपने इंसानी हकूक की हिफाजत करने का, अपनी किस्मतों को अपने हाथ में लेने का। और अमेरिका 10,000 मील दूर से आके किस किस्म के मफादात का यहाँ तहफ़ कर रहा है? मेरा ख्याल है सारी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका गासिब है, अमेरिका जारे है। सारी दुनिया सलामती कौंसिल में जो इन पांच बड़ों ने मोनोपोली बनाई हुई है इस वक्त उनके खिलाफ है, और ये ट्रेंड सामने उस वक्त आता है जब ये पांच मुल्क कोई वीटो करते हैं करारदाद को, जनरल असेंबली में वो करारदाद आती है और भारी अक्सरियत से वो करारदाद पास हो जाती है। इससे साफ लग रहा है कि दुनिया एक तरफ जा रही है और ये जो पांच बड़े हैं और खासतौर पर अमेरिका अपनी जारियत में दूसरी तरफ जा रहा है। अभी इन्होंने अपने असले के जोर पे, ताकत के जोर पे, इक्तसादी जो इनकी इस वक्त मोनोपोली है उसके जोर पे पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है, लेकिन ये कब तक रखेंगे? نہ عرب دنیا انشاءاللہ اور عرب سرزمین جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں رہے گی. اس کے مقدر میں ہے آزاد ہونا, اسرائیل کے مقدر میں تباہی و بربادی ہے. اور ایک وقت آئے گا بہت جلد کہ یہ جو پانچ بٹریکہ ہے ان کی یہ سلامتی کونسل میں جو ویٹو پاور ہے جیسے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ بھی ختم ہوں گی اور عدل کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا.
زمینی سچائی یہ ہے کہ سیریا کے خلاف رچی جانے والی سازش ناکام ہو چکی ہے, مگر سازش کرتا دیشوں کو اور اسرائیل جیسے غیر قانونی شاسن کے لیے اس حقیقت کا ہضم کر پانا بہت کٹھن ہو رہا ہے. اسی لیے وہ سیریا سنکٹ کو کسی نہ کسی روپ میں جاری رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں.